उसके बाद आयत नंबर 94 से 95 में हालत एहराम में शिकार करने के मसले पे कुछ बात है। आपके मेरे लिए तो शिकार का लफ्ज़ को इतना टेम्पटिंग नहीं है। अरबों की घुट्टी में था शिकार, उनके लिए गोश्त को हासिल करने का और इसी तरह से एंटरटेनमेंट का तरीका था शिकार। अब हुआ क्या, एहराम की हालत में शिकार बना। अब आज आप और मैं एहराम की हालत में कितने को घंटे रहते हैं? अब जद्दा एयरपोर्ट से पहले जहाज़ में ही एहराम की नियत कर लेते हैं। आप जद्दा से सीधा मक्का जाते हैं, घंटा लगता है। चले जी, सामान होटल में रखा, जल्दी से उमरा कर ले। 4-5 घंटे में आप पाबंदी से आज़ाद होते हैं। आप ज़रा महसूस तो कीजिए, और ख़ास तौर पर ये आयतें सफ़रे हुदैबिया में नाजिल होती हैं, और इस तरह की और बहुत सारी आयात हैं कि वो मदीना से मक्का बाय रोड जा रहे थे। चलिए, वो भी को बाय रोड 5-6 घंटे वाली बेहतरीन गाड़ी या कोच नहीं थी, वो घोड़ों पे, ऊँटों पे, कहीं पैदल कहीं कुछ, और अहराम की नियत होती थी। हदी के जानवर भी थे, रास्ते में जानवर दिखते थे, और टेम्पटिंग होती थी, और खाने पीने की तो बस ही सफ़र में कमी होती है। तो नतीजा क्या होता था कि जब उनके इर्द गिर्द जानवर आते थे तो वो परेशान हो जाते। ऐसा हुआ सहाबा के साथ। एक सहाबी ऐसे थे कि जिन्होंने अहराम की नियत नहीं की हुई थी, तो वो बैठे अपना कोई जूता सी रहे थे। बाकी सहाबा अहराम की हालत में थे, और वहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा जानवर आ गया। अब ये खुद काट नहीं सकते, आप कह भी नहीं सकते किसी को काट लो, तो ये खंगूरे दे रहे हैं कुछ कर करके, और वो देख ही नहीं रहे हैं। और जब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने फौरन झट जाकर उस जानवर को पकड़ा और शिकार किया। जब शिकार कर लिया उन्होंने, उसको पकाया तो सबने खाया। क्या खूबसूरत है हमारा इस्लाम। तो अल्लाह ताला कहते हैं, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिन मिनस सय्यिद। ये असूल नोट कीजिए इसमें से। आजमाइश हमेशा मनपसंद चीज़ पे आती है। जिस चीज़ को आप अपना वीक पॉइंट बना लेंगे वही आपका होगा। और फिर यही आयत नंबर्स आप नोट कर लें, अहराम की हालत में अगर कोई शिकार कर लेता है तो उसका कफ़ारा भी इसी में लिखा हुआ है। अब जब जानवर काटने नहीं, शिकार करना नहीं, तो क्या फिर जो पानी का शिकार है वो भी मना है? तो उसकी दलील अगली आयत, आयत 96 में है, कैसा नहीं है। सी फूड आबी शिकार कर सकता है हालत एहराम में, पानी के जानवरों को ज़िबा करके या उनको लेके खाया जा सकता है। उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तआमुहू मताअ लकुम वलि सय्यारा, यानी को बहरी सफ़र पे है आप, वो कई दिन तक उस में रहेगा, तो फिर समंदर से मछलियाँ वगैरह पकड़ कर उनको खाया जा सकता है। और वत्तकुल्लाहल्लज़ी तुहशरून, इस पे गौर कीजिए, उस अल्लाह से डर जाओ जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। असल इन पाबंदियों से अल्लाह ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर तकवा हो। अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। देखिए, छुप के खाना क्या मुश्किल है, किसको पता चलता है? जैसे रोज़े की हालत में आपको पता चल जाता है कि मैं रोज़े से हूँ, किसी और को तो नहीं पता। आप खा भी लें, किसी को पता भी नहीं जाएगा, वॉशरूम में जाएं, पानी पी लें। लेकिन ये तकवा और वापसी अल्लाह ताला की तरफ जाने की बात है। फिर इसके बाद आयत नंबर 97 में शायर इल्लाह का एहतराम। शायर इल्लाह क्या है? शऊर से शायर कहते हैं बाल को, वो चीज़ जिसको देखकर आपको इस्लाम याद आ जाए। मसलन आप देखिए कि इस एक आयत में जालल काबतल बैत से लेके वन अल्लाह बिकुल्ली शय नलीम, इसमें मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं। आप इसको रिचुअल्स कह सकते हैं इंग्लिश में। आप देखिए कि वो जानवर जिसको आप कुर्बानी के लिए लाते हैं, और बकरीद पे तो हमारे घरों में भी आते हैं, वो भी शायर इल्ला। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दाढ़ी, टोपी, मुस्लिम अटायर, औरत का हिजाब, निकाब, ये सब चीज़ें इस्लाम की यादगारें हैं ना। तो कहा कि कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ। अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। और ख़ास तौर पे काबा को अल बैतल हराम कहा गया इस आयत में। क्यों? क्योंकि इसकी हदूद में शिकार करना मना है, दरख्त वगैरह काटना भी मना है। और आयत के एंड पे कितनी प्यारी बात है आयत 98 के लमु अन्नल्लाह या वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब वअन्नल्लाह गफूरु रहीम। आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम की एडवर्स खूबियाँ या सिफात एक ही जगह आ गई। क्या पता चला? अगर तुम नाफरमानी करोगे, सरकशी करोगे, ट्रांसग्रेशन करोगे, तो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह पकड़ेगा। और अगर नदामत के साथ तुम पिछली ज़िंदगी के गुनाहों पे दिल में तकलीफ़ महसूस करते हुए माफ़ी मांगोगे, तो वो गफूर रहीम भी है। आज भी आप देखिए कि माँ और बच्चे की मोहब्बत से आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि माँ अपनी तबीयत के एतबार से अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, और बाप भी, बाप नहीं चाहता बच्चे को सजा दे, लेकिन बच्चा अगर एक तो गलत काम करे फिर आगे से बदतमीजी करे तो बाप क्या करेगा? बच्चे से गलत काम हो जाए और वो करे सॉरी अबू, एक्सक्यूज मी, मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो बाप भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला की तो मोहब्बत की कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। फिर आयत नंबर 99 का मौजू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे पहुँचाना है, मनवाना नहीं। मा अलर रसूली इल्लल बलाग, वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। आप देखिए कि ये क्यों है। जब आपका काम क्या है कि आप बात पहुंचा दें, तो आप बात को फोकस करेंगे ना, एज इट इज़ वो बात आगे पहुंच जाएगी। और अगर मिसाल है कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मेरा ज़िम्मा इस वक्त है कि मैं आपको 7th पारे का खुलासा और 7th पारे का तर्जमा पहुँचा दूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, आपने सुनने के बाद मानना कि नहीं मानना, आपको इस पे एतबार है कि नहीं, मेरा इससे क्या जाता है? तो मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ जो कुछ अल्लाह ने बताया मैं आपको पेश कर दूँगी। लेकिन अगर मैं आज इस सोच से ही आपको बात करूँ कि मैंने आपको मनवाना है, तो जब मनवाने पे नियत होती है ना, तो मैं पैगाम बदल दूँगी। ज़रा आप एक चीज़ नहीं मान रहे, तो फिर मैं कहूँगी अच्छा ये नहीं करिए वो कीजिए, अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा थोड़ा डायल्यूट करें, अच्छा थोड़ी सी शराब पी सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा जुआ खेल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी खयानत होगी। आप पोस्टमैन को जहन में लाइए, उसको पे किस चीज़ की मिलती है कि उसने ख़त डिलीवर करने हैं। अब एक ख़त में दुख की खबर है, खुशी की खबर है, कोई बिल है, कोई पे चेक है, उसको उससे क्या लेना? तो हमेशा इस बात को सामने रखिए, अगर कभी भी आपको अल्लाह ताला लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए और आप पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो बिल्कुल एज़ इट इज़ दीजिए। नमक मर्च मसाला नहीं डालना, कोई डायल्यूट नहीं करना। अफसोस की बात है कि हमारे कल्चर में तो फ्रूट पर भी मर्च नमक डाल के खाते हैं। बेचारा वो भी ज़ुबान हाल से रो रहा होता है कि बचाओ मुझे, मैंने इनका क्या किया, ये मेरे ऊपर चाट मसाला डाल रहे हैं। इसी तरह आज हम दीन के मसलों में भी चाट मसाला डालते हैं, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। आगे देखिए आयत नंबर 100, हक का मेयार कसरत नहीं। आपको नहीं समझ आएगा जब तक मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगी, मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। आज दुनिया क्या कहती है, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अल्लाह ताला इसका अपोजिट दे रहे हैं, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, तय्यब और नापाक बराबर नहीं है, खबीस और तय्यब पाक नहीं है। हालांकि आपको कसरत बड़ी अच्छी लगती है खबीस की, बस अल्लाह से डर जाओ ए अक्ल वालो ताकि तुम फला पाओ। क्या पता चला इस आयत में, हलाल चीज़ पाक है, हराम चीज़ नापाक है। ज़िंदगी में आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ पाक चीज़ को पसंद करता है, और पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ चढ़ते हैं, आगे हम 17वें बारे में पढ़ेंगे, और अमल साले उसको लेके चढ़ता है। इसके बरक्स जो नापाक और हराम चीज़ें हैं ना, उनके ज़िंदगी में भी बड़े नापाक असरात हैं, जबकि हलाल के असरात बड़े पाक हैं। मसलन आप देखिए कि रिस्क हलाल का एक नतीजा ज़रूर निकलता है कि नज़रें पाक रहती हैं। जिस मर्द की कमाई में हलाल ही है सिर्फ, उसके बच्चे उसके फरमाबरदार होंगे, उसकी बीवी में नशूस नहीं आएगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसके बरक्स रिस्क हराम में नेगेटिव। आज आप अक्सर सुनते हैं पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। खामखा घर में झगड़े, सब ठीक है, छोटी सी बात पे मियाँ साहब को गुस्सा आ गया, और मर्द बेचारा इतना कुछ कर रहा है, बेगम साहब खुशी नहीं हो रही, तो ज़रूर सोर्स ऑफ इनकम चेक करने की ज़रूरत है कि जो खाकर पीकर बैठकर पहनकर बैठे हैं, क्या उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं आ गई? ठीक है, फिर मरने के बाद भी इसके ना गलत असरात होंगे। खबीस माल दुनिया और आखिरत में नुकसान का बायस है, तो हमेशा अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को और हर बच्चे को इस चीज़ पे रखिए कि बेटा थोड़ा सही लेकिन हलाल का हो। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने यहाँ ला यस्तविल खबीस व तय्यिब करके एक असूल दे दिया कि हक का मेयार कसरत नहीं है। थोड़ा माल उस ज़्यादा माल से बेहतर है जो इंसान को गाफिल कर दे। देखिए आजकल हर घर में अक्सर शरबत बनता होगा ना, आप पानी में शरबत डाल दें उसका टेस्ट कुछ और होगा, लेकिन आप कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा डल जाता है। आप पहले खूब अच्छी तरह चीनी डाल दें और फिर उसमें 2-3 चम्मच शरबत डाल दें, तो क्या उसका वो टेस्ट होगा? आप ऑरेंज जूस फ्रेश प्योर बनाकर पिएं या आप उसमें पानी और चीनी मिलाकर पिएं, फ़र्क होगा ना? हम सब दुनिया में भी जानते हैं। तो हमेशा अपने आमाल, अपनी चीज़ों को इस नया नज़र से देखा करें कि कल अल्लाह के हाँ मेरा क्या कबूल होगा, फिर उसके बाद आगे आयत 101 से 102 में गैर ज़रूरी सवालात की ममानियत है। बहुत सारे लोगों का जहन ही सवालिया होता है, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, अमल कम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशया कह के कि मत पूछो उन चीज़ों के बारे में जो अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें नागवार गुजरें। और ख़ास तौर पे अभी तो कुरान भी नाजिल हो रहा है। एक मौके पे नबी सल्लम के साथ जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब शुरू कर दिए और अल्लाह के नबी के चेहरे पे नागवारी आ गई। आपने कहा आज तुम मुझसे जो पूछोगे मैं बताऊंगा। हत्ता कि एक शख्स ने कहा मेरा बाप कौन है, अल्लाह के नबी ने एक शख्स का नाम ले दिया जो रसवाई का ज़रिया बना उसके लिए। इसी तरह किसी ने कहा मेरा बाप किधर है, आपने कहा जहन्नुम है। हज़रत उमर ने इस मौके पे नबी के इस मिजाज को भांप लिया तो फिर खड़े होकर कहा नहीं नहीं हम अल्लाह के रब होने पे और आपके रसूल होने पे राजी हैं, लिहाजा हम आपसे कोई फालतू बात नहीं करेंगे। इससे पता चलता है कि उस्ताद है या मुरब्बी है मुज़क्की है उसको जिच नहीं करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स भी पीछे पड़ जाते हैं। आप देखिए कि अगर मूड बदल गया, अगर वो मिजाज बदल गया तो नुकसान किसको होगा, सबको होगा। इसलिए गैर ज़रूरी सवाल नहीं करने चाहिए। और अच्छा चले हर जगह तो क्लासरूम स्टाइल नहीं होता, घरों में बच्चे आपसे बहुत से सवाल करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सवाल जवाब करते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे कि भाई आपको जितनी बात कही गई है आप उस पर अमल कीजिए। और तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। फिर इसके बाद दोबारा अरबों की कुछ बिदात का तذکرہ। लफ्ज़ बिदत हमारे कल्चर में भी मारूफ है, यानी कोई भी काम जो नेकी समझ के किया जाए लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हुक्म ना दिया हो। अरब लोग खुद को हज़रत इब्राहिम के फॉलोअर्स मानते थे, हज़रत इस्माइल की नस्ल में से थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम कर करा लिए हुए थे कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स बन चुके थे, बड़े मशहूर हो चुके थे। उनका जिक्र 103 से 104 में है। मा जाल अल्लाहु मिन बहीरतिन, ये जो लफ्ज़ है ना बहीरा, फिर आगे साहिब आपको दिख रहा है, फिर वसीला, फिर हाम, ये जानवर थे मुख्तलिफ किस्म के। मतलब हाम वो ऊँट होता था कि जिससे 10 बच्चे पैदा हो चुके थे, यानी जिसके जिसकी जुफ्ती से 10 बच्चे पैदा हो गए। अब जब एक ऊँट के ज़रिए से 10 बच्चे पैदा होते हैं ना तो कहते हैं ये ऊँट तो बड़ा बुजुर्ग हो गया है, ये तो पहुँचा हुआ है, अब अगर हम इसके ऊपर बैठेंगे तो इसकी तो बेइज्जती होगी और अगर हमने इसका गोश्त खा लिया तो ये तो बड़ी बेहरमती है। इसलिए क्या करते उसको छोड़ देते अपने बुतों के नाम पे, किसी जगह किसी दरगाह पे छोड़ आते, किसी मज़ार पे छोड़ आते। अल्लाह ने कहा ऐसा कोई हुक्म ही नहीं। इसी तरह बहीरा, साहिबा, सांड और वसीला कुछ इसी किस्म के जानवरों के बातें थी। अल्लाह ताला कहते हैं ये कौन है, यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये अल्लाह के नाम पे झूठ बोलते हैं। और असल वजह के अक्सरहुम ला याकिलून, इनमें से अक्सर को अक्ल नहीं है। और जब कभी पूछा जाए ऐसा क्यों करते हो तो क्या कहते थे, वजत नाल ही आबा अना, हमने तो भी अपने बाप दादा को ऐसे ही करता देखा। अल्लाह ताला कहते हैं अब लो का ना आबा हम ला यालमुना शैया, अच्छा अगर जो तुम्हारे माँ बाप और जो बाप दादा थे उनके सिल्म नहीं था, वो कुछ जानते नहीं थे, भला यख्ता दून और हिदायत पे नहीं थे तो क्या तुम वही काम करोगे। फिर आज हमारे माशरे में क्या ये चीज़ है, हम बाप दादा के वक्त की चीज़ें तो फेंक चुके, वो सोफे निकल गए जो दादी के वक्त में घर में थे, वो कपड़े जो नानी दादी ने संभाल के रखे हुए थे कि ये इसको शादी में पहनाना, आज वो हमें आउटडेटेड लगते हैं, वो गरारे और वो लंबे लंबे दुपट्टे तो गए। हम आज खाने भी अपनी दादियों नानियों के स्टाइल के नहीं खाते, दादी अम्मा के हाथ का एक पराठा खाकर सारा दिन बच्चे को दादी की मोहब्बत महसूस होती थी, आज हमने क्या कुछ कर दिया। लेकिन जहाँ दीन की बात आती है फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये रस्म मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरी सास यही करती थी, मेरी दादी, मेरी नानी और कुछ। तो शैतान ने ये जो धोखा दिया ना, अल्लाह ताला ने इधर इसी बात को कह दिया कि क्या तुम बाप दादा को, वो बेचारे तो मासूमियत में कुछ कर गए, बोलपन था। और आप जानते हैं कि अब दिन ब दिन दीन आम हो रहा है, पढ़ने पढ़ाने का रिवाज हो रहा है, शऊर बढ़ रहा है। आज आपका 8-10 साल का बच्चा आपके उस एज के जब आप 8-10 साल के थे उससे बहुत मुख्तलिफ है। आज मेच्योरिटी है, आज इल्म रिवील हो रहा है कुछ ना कुछ। जब दौर ऐसा आता है कि जब इल्म का दौर आता है तो जहनों पे जो धुंध है वो छट जाती है। लेकिन आज हम अपने लिए अपन के नुक्ता इधर ये ले लेते हैं कि हम ज़रा देखें तो सही, आज के बाद एक असूल बनाएं। रमज़ान है, फिर शवाल, और इसी तरह आप देखते हैं मुहर्रम के महीने आते हैं, ज़िलक़ाद आता है, रबी अव्वल आता है, रजब आता है। आप किसी भी महीने में नेकी समझ के जो भी काम करती हैं आज तक, ज़रा सजा का इसके कुरान और सुन्नत से सोर्स ढूंढ लीजिए, रेफरेंस ढूंढ लीजिए। अगर सहाबा या अल्लाह के नबी ने ये किया, बिस्मिल्लाह। और इसमें हमारे मरने जीने की रस्में भी हैं। एक शादी जाकर देख लीजिए कि वहाँ कैसे थी और आज कहाँ है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो जहनों को और दिल को खोल देंगी। इसीलिए बाज़ दफ़ा लोग कहते क्या, नहीं ना मैं नहीं कर सकती, वो मेरे शौहर है ना, फिर वो बुरा मनाते हैं, वो मेरी बीवी मुझसे रूठ जाएगी, मेरी सास नाराज़ होंगी। तो आयत 105 में अल्लाह ने इसका जवाब दिया, टॉपिक लिख लें, किसी की गुमराही हमारी बेअमली का जवाज़ नहीं बन सकती। और हज़रत अबू बकर को भी ये आयत बड़ी पसंद थी, और मुझे भी ये बड़ी पसंद है, क्योंकि मैं जब भी लोगों के बीच में निकलती हूँ, अक्सर ख़वातीन अपने शोहरों का नाम लेके गलत काम करना चाहती हैं, वो प्लकिंग करनी है, मियाँ को पसंद है, भैया आपके हस्बैंड आपके एक एक बाल गिनते, मर्दों को कहाँ इन चीज़ों की परवाह होती है, और किसको पता है प्लकिंग की जाती है कि नहीं, किसको पता है कि मेकअप के आजकल क्या तरीके हैं और स्किन केयर के क्या है। लेकिन असल बात यह है ना कि जिस चीज़ में हमारा दिल कर रहा होता है ना, तो हम किसी के कंधे पे उसका सिरा रख देते हैं। तो फरमाया, या अय्युल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा अहतदैतुम, तुम्हें हिदायत से भटका हुआ शख्स बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगा, शर्त एक है, जब तुम हिदायत पे हो। और कैसे हिदायत पे रहो, याद रखो कि इलल्लाह ही मर्जियुकुम जमीया, मैंने शोहर को नहीं जवाब देना, मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है। फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुमको खबर देगा जो तुम अमल करते थे। आमतौर पे देखा है बड़ी शरीफ साफ सुथरी भोली भाली बच्चियाँ, माँ बाप ने बड़ी प्रोटेक्शन के साथ उनको पाला होता है, शादी के फौरन बाद बदलने लगती हैं, लिबास बदल जाता है, हिजाब उतरने लगता है, अबाए से निकल आई, निकाब से निकल आई, क्या है जी हमारे तो ससुराल का माहौल ऐसा। पर देखे ना, फिर इनको तो खुश रखना है, तो ये आयत कभी ना भूलिए, किसी के मजबूर करने पे अगर आपने कोई गलत काम कर लिया तो वो आपकी जिम्मेदारी से नहीं निकला। इसलिए जब आप अल्लाह के सामने पेश होने को समझेंगे तो आपको इन बातों का जवाब मिलेगा। तो क्या पता चला कि अगर समझाने के बावजूद लोग नेकी का रास्ता इख्तियार ना करें और बुराई से बाज ना आए, तो ये नुकसानदेह नहीं है, जबकि हम खुद नेकी पर रहें और बुराई से बचते रहें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के उलमा में जो सबसे पहली खराबी आई थी वो क्या थी, कि वो लोगों को बुराइयों पे रोकते, लेकिन जब लोग उनकी उनके कहने पे ना रुकते तो अगले दिन ये खुद उनके साथ मिल जाते, उनके हम प्याला और हम निवाला बनते। अब अगर इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ना दूँ तो मैं भी नहीं हक अदा कर पाऊंगी। आज कुछ बुजुर्ग शादियों के मौके पे बच्चों को मना करते हैं कि देखो बेपर्दगी नहीं होगी, औरत मर्द इकट्ठे नहीं बैठेंगे, एक गाना बजाना नहीं होगा। अब वो बच्चे आगे से बात नहीं मानते, पोता है, नवासा है, बेटा, वो कहता नहीं मैं तो ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये गेटअप होगा, वो होगा, और मेरी दुल्हन तो सबके साथ देखेगी, और अब उससे ज़्यादा भी खुराफात आ गई। अब आपने तो कह दिया था, अच्छा वो नहीं माने तो क्या आपको जाकर उस महफिल का हिस्सा बनना चाहिए? हम बन जाते हैं, फिर वही दादी दादा को स्टेज पे बिठाते हैं, फिर वही सास ससुर और ये बड़े प्यार से फैमिली फोटो सेशंस होते हैं। ये नहीं करना, आपने बता दिया, अगला नहीं मानता तो वॉकआउट, जाइए फिर, आप अपने जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने आपको समझ दी, अक्ल दी, आप बालिग हो गए, आप जाइए, मैं नहीं जा रही। आप कह के तो देखिए कि माँ होने के नाते मैं नहीं होंगी शादी में, खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये जो इमोशनल टॉर्चर है ना, ये नहीं हम देते। हम ऐसे वक्तों पर कहते नहीं, जवान बच्चा है, खुशी का मौका है, ये है। तो ये आयत हमेशा अपने पल्लू से बांधिए कि इलल्लाह ही मर्जियों को, जब अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। और दूसरी तरफ जो हम दौरे कुरान कर रहे हैं, वो रजी अल्लाह अन्हु है ना, हर दिन इसी जज्बे के साथ बैठ कर उठते हैं वहाँ से, कि सहाबा की सबसे बड़ी नेकी ही ये थी कि उन्होंने अल्लाह को नाराज़ करके बंदों को खुश नहीं किया। अल्लाह ताला मुझे आपको भी इसकी तौफीक दे।